العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الآراتين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. شب دعاء، شب جمعة، شب مناجات، شب التجاء، شب إيصال ثواب برای أموات، شب محاسبة النفس، شب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بہترین دعا یہی ہے کہ مولا کے ظہور کی دعا کریں تاکہ یہ تباہیاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ خون خرابہ در یہ درندگی سب ختم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وبري قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. دشمنان امام مهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف کے عنوان سے یہ ہماری دوسری کڑی ہے. انیمیز آف امام مهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف. کل ہم نے مقدمتاً چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے. یقیناً قرآن نے ہر بات کا حل پیش کیا ہے اس کے لیے جو اس سے قربت حاصل کرتا ہے، اس سے انلائٹن ہوتا ہے، اس سے بصیرت حاصل کرتا ہے. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ اللہ کا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے. جب اس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو بس اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ مولا نے فرمایا لا بصوت یقرا، جب کن کہتے ہیں تو گلے سے آواز آتی ہے، کاف نون پیش، کاف نون دم، کون کی آواز. اس طرح نہیں، اللہ کا ارادہ ہی آواز ہے، اللہ کا ارادہ ہی حکم ہے، اور وہ ارادہ اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو لوگ ضعیف کر دیے گئے ہیں، جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، ان کو اُبھارے. یہ اللہ کا ارادہ. بالکل دو لاجک الگ الگ ہیں، ایک پاور کی لاجک ہے एक लॉजिक है हक और सच्चाई की। हमने इरादा कर लिया है कि जिनको दबाया गया है, जिनको कोशिश की गई है वेल ऑर्गेनाइज तौर पर उन्हें तबाह कर दिया जाए, अल्लाह ताला करे कि हम उनको उभारेंगे। और न सिर्फ उभारेंगे, हम उनको लीडर बनाएंगे, इंसानी माशरे के लिए रहनुमा बनाएंगे, वारिसीन। और न सिर्फ ये बल्कि एयर्स ऑफ विरासत ये जमीन उनकी मौरूसी उनको मिलेगी, यानी हुकूमत उनके हाथ में होगी। मुस्तज़ाफीन, ये अल्लाह का वायदा है, जो लोग कमजोर हैं, जिनको कमजोर बना दिया गया है या जिनको कमजोर समझा जाता है, उनको अल्लाह उबारेगा। इस आयत में हर आयत की तरह कई पैगामात हैं। इस्तज़ाफू के माने ये हैं कि एक ग्रुप है जो मुस्तकबरीन का, जो मुस्तज़फीन बना रहा है, ये समझे अच्छी तरह से। अगर किसी को कमजोर बनाया जा रहा है, किसी को वो वीक किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, कोई दबा रहा है जो वीक किया जा रहा है, उनको कहेंगे मुस्तकबरीन। इस्तिकबार, अरोगेंसी, ठीरनी, अब नाम दीजिए जो नाम। कुरान में दुश्मन कहते हैं अदुव, अदुव लफ्ज इस्तेमाल होता अरबी में, अदुव है। सूरह बकरा की ये दो आयतें कुछ हमें इस तरफ रहनुमाई करती हैं। कुल मन काना अदुवन ले जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिकन लिमा बैन यदै وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ। कह दीजिए सरकार, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि जो लोग जिब्राइल के दुश्मन है, जिब्राइल ने क्या किया भाई? तो एक अमीन है, जिब्राइल अमीन है, उसने जो मैसेज लाना था वो लाया। ना जिब्राइल नजर आ रहे हैं, ना मैसेज नजर आ रहा है, नजर आ रहा है तो कल्ब रिसालत में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये पयाम इतना खूबसूरत है, इतना कवी है, इसके मुकाबले में लोग खड़े हो गए। तुम जिब्राइल की दुश्मनी क्यों कर रहे हो? फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका बिइज़्निल्लाह, जिसने कुरान को लाया तेरे दिल पर उतारा अल्लाह की इजाजत से, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लाया, वो अमीन है, मुसद्दकन तस्दीक कर रहा है, जो तुम्हारे सामने है किताब कुरान मजीद, उसकी तस्दीक है। वह हुदम, वह हिदायत है, वह बुशरा लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए बशारत है, यानी जो लोग इस दावत को सुनकर के लब्बैक कहते हैं उनके लिए बशारत है, गुड टाइडिंग्स। उसके बाद मन का ना आदोसी के फौरन बाद सूरह बकरा 98 आयत पढ़िए। मन का ना आदु वल्लिल्ला व मलाइकते व रसूले व जिब्रील व मीकाइल्ला फइन्नल्लाह आदु वल्लिल काफिरीन, जो भी दुश्मन हो अल्लाह का व मलाइका का और रसूलों का व जिब्राइल का व मीकाइल का, ये दुश्मन अल्लाह के दुश्मन है। फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिर, ये नॉन बिलीवर्स का अल्लाह भी काफिर है। नॉन बिलीवर्स की कैफियत भी यहाँ पे मालूम हो रही है कि कौन है नॉन बिलीवर्स। नॉन बिलीवर्स जो है काफिरीन, काफिर कौन है? जो दुश्मनी अल्लाह की, मलाइका की, रसूलों की, जिब्राइल की, मीकाईल, यानी मैसेंजर्स और मैसेंजर्स को मैसेज लाने वाले मलाइका, उनका इनकार करने वाले। और इनकार करने वाले के माने दे नो कि व्हाट इज इट, कि वही मालूम है, कुरान मालूम है, दिक्कत से जानते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक, उसके बावजूद भी जो है उसके खिलाफ जाते हैं। यहाँ पर एक बात साबित हो रही है, अगर हम कह पूछ रहे हैं कि दुश्मनान इमाम महदी कौन है, जो दुश्मन खुदा और दुश्मन इमाम महदी है। दुश्मन खुदा कौन है, अल्लाह का दुश्मन कौन है? कुरान कह रहा है, ये सूरह बकरा की आयतें 97-98 ये कह रही हैं, अल्लाह का दुश्मन वो है जो मलाइका का दुश्मन हो, जो रसूलों का दुश्मन हो, उसके बाद जिब्राइल का दुश्मन हो। मैसेज को लाने वाले का अगर दुश्मन है तो जिस पर मैसेज उतर रहा है उससे भी दुश्मनी है, खुद उस मैसेज से भी दुश्मनी है, ये कौन है? ये काफिर है, ये नॉन बिलीवर्स। तो नॉन बिलीवर्स ये काफिर जुहूद कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जाना है कि दिस इज द रियलिटी। आज दुनिया को जो रन करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी तो नहीं, कम से कम जो लोग की लोग हैं वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। जनरल पब्लिक अभी जिनको हम लोग नॉन बिलीवर्स कहते हैं वो पैदाइश के एतबार से है, वरना वो काफिर जुहूद नहीं है। जिस तरह से मुसलमान मुसलमान नहीं है क्योंकि पैदाइश के एतबार से मुसलमान है, किसी के घर में पैदा हो गए मुसलमान के, इसीलिए मुसलमान कहा जा रहा है। मुसलमान उस वक्त है जबकि इस्लाम को समझे और इस्लाम पर चले। सरकार की सारत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज कियामत दुश्मन तरीन अफराद 8 किस्म के लोग हैं, और इससे पता चलता है कि इमाम महदी अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से दुश्मनी किस तरह के लोग करते हैं। इसलिए कि मन का ना अदुमल जिब्रील, जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, जो अल्लाह का दुश्मन है वो रसूलों का दुश्मन है, जिब्राइल का दुश्मन है, मीकाइल का दुश्मन यानी मलाइका का दुश्मन है। दुश्मन के माने अपोजिट, अपोजिट व्यू रखता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। सरकार ने फरमाया कि 8 तरह के लोग कयामत के दिन अल्लाह के दुश्मनों में से हैं, 8 काइंड्स ऑफ पीपल। नंबर 1 सकारून, ये कंजुल माल किताब में बहुत ही मशहूर किताब है, उस किताब में से यह हदीस है। सकारून के माने झूठ बोलने वाले। अब लीजिए आप इसको एलाबोरेट कीजिए, उनका सिस्टम, मीडिया, हमारे जहनों में सब यही बिठाया गया सब कई सालों से कि दूसरे ममालिक के जितने मीडिया हैं वो मीडिया क्या है, वो गवर्नमेंट के बैकअप में है, यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कहते हैं। अभी भी सिलेंडर जब भी ईरान के मसला, ईरान का कोई प्रेस टीवी की या कोई खबर है ऐसे आती है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, कितना बड़ा झूठ है। खुद बीबीसी को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, कितने मिलियन डॉलर मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं सालाना बीबीसी को? अगर स्पॉन्सर्ड नहीं है तो हक क्यों नहीं बोलते हैं? फलस्तीन के मजलूमियों की कहानी के क्यों नहीं सुनाते हैं? आईसीस किसने बनाया क्यों नहीं सुनाते? ये लोग सक्कारून है, ऐसा सक्का बहुत ज्यादा झूठे ने सुबह से शाम तक। और हमारे मुसलमान यानी अक्सर ये सीधे साधे ही समझते हैं कि ये लोग, हाँ भाई ये लोग बहुत ही, इनकी मीडिया बहुत अच्छी मीडिया है, जब बीबीसी ने कह दिया इसके माने के ऊपर से वही आ गया, अस्तगफिरुल्लाह। इंग्लिश पे बात किसी ने कर दी तो मालूम बहुत ही, मैं किसी ने क्लिप भेजा था वहां पर दिल्ली के जो नया रेवोल्यूशन आया है आवाम पार्टी की तरफ से लीडर हो गया, उससे वो एक फंक्शन में बैठा हुआ एक लड़की उठी इंग्लिश में बात करने लगी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ, देखो भैया सब कैसे इंग्लिश तो थी बेहतरीन बोल रही है, तो अंग्रेजी बोलना जो इल्म आ गया। ये हमारे जहनों को इस तरह से गुलाम बनाया गया, इतना झूठ बोला गया। पढ़ो फारसी बेचो तेल, यानी फारसी पढ़ने से तुम्हें सिवाय तेल बेचने की कोई और नहीं। सक्कारों रोज कियामत, झूठे जो हैं अल्लाह के दुश्मन है। झूठे कौन है? ये लोग मिशनरी बाकायदा प्रोग्राम बना के झूठ बोलते हैं। इस्लामी जमहूरी के खिलाफ कई मीडिया को खोला गया, मिलियन सब डॉलर्स खर्च करते हैं। अब ईरानी बैठे हुए बोल रहे हैं ईरान के खिलाफ, फारसी में बोल रहे हैं, झूठ है, सब कुछ झूठ है। सक्कारों डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज्यादा। उसके बाद खयालों मुस्तकबरीन, अरोगेंसी, टिरनी, वेल नोन है, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया इनकी अरोगेंसी से वाकिफ है। वो लोग जो अब ये रहे इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे वो लोग हैं जो अपने भाइयों के कीना हमारे अपने दिलों में रखते हैं। कीना तो ऐसी अच्छी नहीं है, ग्रजेस अच्छे नहीं है। ओपन माइंडेड होना चाहिए, दिल में किसी तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए किसी के मोमिन के खिलाफ, किसी इंसान के खिलाफ। क्यों? भी वजह क्या है? इंसान की बहुत बड़ी एनर्जी इसी कीना तोजी में खत्म हो जाती है, यानी ग्रजेस। रोज कयामत एक कीना तोस अपने भाइयों के खिलाफ की ना तोजी करने वाले के लिए वो अल्लाह के दुश्मनों में शुमार होगा। जब कभी अल्लाह की तरफ दावत दी जाती है तो वो क्रॉलिंग, जैसे मौला मीम ने फरमाया, नुफूसिल बिता अम्मा उमिरत व सिरा अम्मा नुहियत। मैं जो बोला परवरदिगारा उन नफूस से, उन नफूस से मैं पनाह मांगता हूं, जब तेरा हुक्म होता है तो वो क्रॉल आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जहां तूने कहा कि ये नहीं करो, फौरन फंस जाते। ऐसे लोग भी कयामत के दिन दुश्मन आने, अल्लाह अल्लाह का दुश्मन याने दुश्मन आने अहले बैत, दुश्मन आने अहले बैत के दुश्मन। हमारी दोस्ती दुश्मनी किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। उसूल तरबियत हमने मॉरल साइंस में ही बताया था ना। पांचवें वो लोग हैं जो हिर्स हरीस हैं, ग्रीडी हैं, लालच है उनमें। आज ये लालच का ही नतीजा है कि चार या पांच इंस्टीट्यूशन के पास सारी दुनिया दौलत जमा हुई है। उन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि यमन जल जाए, फलस्तीन जल रहा है, खत्म हो रहा है, और आपका अफगानिस्तान की आला है, अफ्रीका में भूखों लोग इंसान मर रहे हैं, 2 बिलियन इंसानों के पास एक दिन का खाना नहीं है। उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, और इनके पास रहने वाला भी नहीं है। कारून के किस्से कुरान ने, वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके किस्सों को नकल किया कुरान, इनका कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। छठवें वो ग्रुप है जो लोग जिनका काम ही क्रिटिकल, हमेशा क्रिटिकल, नुक्ताचीनी, हमेशा जिंदगी उनकी नुक्ताचीनी, कभी हुस्न ज़न नहीं रखते, हमेशा मुखालिफत। साथ में वो लोग जो अपने दोस्तों मोमिनीन के दरमियान तफरीका डालते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। और आठवें तोहमत लगाने वाले, बेगुनाहों पर तोहमत लगाने वाले, उनके नगजिशों को, उनके आयबों को तराशने वाले, ये 8 ग्रुप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज कियामत अल्लाह के दुश्मनों में से शुमार होंगे। यानी जो अल्लाह का दुश्मन है वो इमाम महदी का दुश्मन है, जो इमाम महदी का दुश्मन है अल्लाह का दुश्मन है। और इसको जब मैच करते हैं हम, आज वही चीजें नजर आती हैं। कल मैंने हदीस जो सुनाई, कबल क़ियामिल क़ाइम खम्सु अलामातिन महतूमातिन, यानी पांच अलामतें ऐसी, मैंने साल गुज़श्ता बताया था हर साल, कुछ गैर हतमी निशानियां हैं, कुछ हतमी निशानियां। हतमी यानी फरशोर यह होने वाला है, गैर हतमी लिस्ट बहुत बड़ी है, यह होगा यह होगा। आपने सुना, कई मरतबा सुना है आपने, कई उलमाए किराम से। जो हतमी है यकीनी है वो पांच निशानियां हैं, यमानी का खुरूज, सुफियानी का खुरूज, सायहा एक आवाज, कत्ल नफ्स ज़कीया, नफ्स ज़कीया पाकीज़ा नफ्स का कत्ल, वो खस्फ़ बिल बायदा। एक ऐसी जमीन जहां पर इराक में शायद वो मुकाम है जहां पर वो जमीन धस जाएगी। ये पांच निशानियां इमाम ज़माना की, इनमें से जो हमारे मौजू से मरबूत है, ये सुफियानी कौन है? सुफियानी के सिलसिले में आपने सुना है बहुत सी बातें। ये होगा सर सख्त दुश्मन होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने इस यानी दुश्मन की लजाजत, इसकी गंदगी के बारे में, इसकी प्लानिंग के बारे में इस तरह से फरमाया है, अगर तुम देखो सुफियानी को तो वो पलीद तरीन इंसान है। उसके बाद रंग भी बताया उसका इमाम ने। इस सिलसिले में जो उलमा ने काम किया वो ये है कि जरूरी नहीं है कि सुफियानी कोई एक शख्स हो जिसकी कैफियत ऐसी हो। बल्कि एक सिस्टम है पूरा, सुफियानी एक शख्स नहीं है, एक सिस्टम है। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा ने मौला अमीर मोमिनीन से रिवायत की है, सुफियानी एक शख्स है जिसके चार शाने हैं, चार बाजू हैं। इससे भी नतीजा बता रहा है कि इन्हें वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इसको यूं लेकर आइए तो बात समझ में आएगी। जो डिस्ट्रक्टिव चीजें पेश करते हैं दुनिया इंसानी माशरे में, और इनके किरदार ऐसे हैं कि उनके चेहरे जाहरी नहीं है, बल्कि अभी आप देख रहे हैं कि जॉर्ज लॉ जो केस चल रहा है उस सिलसिले 18 मिनट तक एक इंसान के गर्दन पर एक शख्स पैर रखता है, पुलिस वाला जो हिफाजत का काम करे और मेक श्योर करता है कि मर जाए, प्रीमेडिटेड डेथ एंड मर्डर, ऐसे सब वो हजारों केसेस। और ये लोग हमें मुंह दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं इंसानी हुकूक क्या हैं, इंसानी अकदार क्या हैं, कितना झूठ है। निफाक सरकशी रिवायत में है कि बदतरीन अहकाम को सादिक करने वाला सुफियानी है। मैंने शैतान के जितनी प्रोग्राम शैतान बनाया है इंसान को तबाह करने के लिए, इनका प्रोग्राम यही है। अब जरा सा दज्जाल और सुफियानी को इस सूरत में हमें देखना है कि वो अशखास नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास हमदर्दी इंसानियत का कोई तसव्वुर नहीं है, जिस तरह से फिरौन के जमाने में يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. زبا کرنا، تقسیم کرنا، وجعل على اشياء يستضعف طائفة منهم، سورة قصص، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ڈیوائڈ اینڈ رول. عراق کو بھی ویسے کر دیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مہاراج رہبر معظم حزب اللہ کی کوشش، حزب اللہ جوانوں کی کوشش نے عراق کو تین حصوں میں ٹرائنگل سے بچا لیا. اب یہ کوشش جیسے یمن میں ہو رہی ہے، نارتھ کو ساؤتھ سے تقسیم کرنے کی، ان کا کام ہی ہے. وجعل اعلیٰ شیعہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوگا، یہ بلا وہیں دنیا تک رہے گی، نہیں، یہ آنے والی ہے، تمہارے گھر تک آنے والی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ ہونے والا ہے، تمہارا کنٹری بھی ٹکڑے ہونے والا ہے. من حفر بئرا لاخی فقد وقع فیہ. مولا امیر المومنین جب جنگ جمل سے پلٹ رہے تھے، وہاں پر کچھ نشانیوں کو ظہور امام سے متعلق انشاء فرمایا بتایا. اس میں سے ایک دجال کا خروج بھی ہے، جس کی ایک آنکھ ہے. اب اس کو علماء نے جو تعبیر کی ہے، جو تفسیر کی ہے، جو انویل کیا ہے، ون سائڈڈنس، وی آر دا کریکٹ، وی آر دا رائٹ، آل ادرس آر ناٹ رائٹ. یہ ایک آنکھ نہیں تو کیا، ہم ہی صحیح ہیں، ہمارا سسٹم ہی صحیح ہے، دوسرے غلط ہیں. اور یہ وہ سسٹم بھی ایک ہی نہیں ہے. ہم جب پوچھتے ہیں کہ جب آپ کا سسٹم اتنا اچھا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، تو دوسرے کنٹری میں وہی سسٹم چلائیے، حجاز میں کیوں نہیں چلاتے، بحرین میں وہی سسٹم کیوں نہیں چلاتے، فلسطین میں کیوں وہی سسٹم نہیں چلاتے. تین جنریشن ان کو کیک آؤٹ کر دیا گیا، اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہزاروں گھروں کو، ہزاروں دیہاتوں کو مسمار کر دیا گیا، روزانہ کر رہے ہیں. کیا یہ تمہارے کنٹری میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تمہارے پاس قانون ہے. تو دوسری کنٹری میں تم لوگ، تمہاری سرپرستی بھی یہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ تمہارا اسٹینڈرڈ جو ہے ایک نہیں ہے، تمہارا اسٹینڈرڈ ہے پاور. یہ کیا ہے؟ ایک نگاہ، ایک آنکھ. اور لوگوں کو اپنے جادو، اور یہ کیا جادو ہے، یہ میڈیا کے جادو نہیں ہے، اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں سب سچ ہے، صحیح سچ ہے. اور اس میڈیا پہ لوگ ملین بلینز ڈالرز خرچ کرتے ہیں اس جھوٹ کے پرچار کے لیے. اور دشمنوں میں سے جس کا نام لیا گیا ہے، شی سبانی ہے، جو سفیانی کے خروج سے پیدا آئے، پہلے آئے گا. یعنی ایک سب مقدمے کی بات ہے، یہ پروفیسرز ہیں جو حکومت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے آنا، یہ جہاں پر یہ ڈسٹرکشن دیکھتے ہیں وہاں پر انسان کا دل بیٹھنے لگتا ہے. سیریا کے حالات، اپنے مسلمانوں کے حالات، یہ تفرقہ اندازی، مگر جہاں یہ ہے وہاں پر ایک امید کی کرن بھی روشن ہوتی ہے. یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، یا آہٹ بتا رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اسی لیے ظہور صغرا، بعض علماء نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح سے غیبت صغرا غیبت کبرا ہے، اسی طرح ظہور صغرا بامعرفت انسان کے لیے ظہور صغرا ہے. یہ تمام چیزیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حرمت مقام مقدسات، مقامات مقدسات کی حتیٰ کہ حرمت، جو حالت बैतुल मकदस की बनाई जा रही है, बनाई गई है, क्या हद की हुकूमत नहीं है? खाने काबा के चारों तरफ ऐसी इमारतें जो मानवियत है खाने काबा को बर्बाद करने की कोशिश करें, क्या यह हकत हद की हुकूमत नहीं है? सीरिया में मकामात मुकदसात खत्म हो जाकर निजाम विलायत ना होता, यह हकीकत की बात है। बाकायदा एक टीम को बनाया गया, एक फिक्र को बनाया गया है जिसका नाम है सलफिज्म वहाबिज्म, जो डिस्ट्रक्टिव है इस्लामिक परस्पेक्टिव के लिए, इस्लामी हकायक के लिए। 99% मुसलमानों के दिल में चोट लगाने वाली बात है, जहां शफात वसीले के वसीले से हटकर बहुत सी ऐसी बातें जो दीन इस्लाम ने वाज़े तौर पर हमें गाइड की हैं उसके खिलाफ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वहां का करिकुलम बदलेंगे, बदल रहे हैं आप। अभी एक्सट्रीमिज्म जो इनके पास पैदा हुई है उसको नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? अभी सिलेबस बनाएंगे। जाहिर सी बात है, जब इनके बनाए हुए लीडर बनाए जाते हैं तो उनका सिस्टम भी बनाना चाहिए। कुछ बाकी नहीं रहने वाला, ये सब खत्म होने वाला है। इमाम महदी अज्जल अल्लाह ताला फरजहू शरीफ तशरीफ लाने वाले हैं, आने वाले हैं। इनकलाब दुनिया में आने वाला है। इस सारी दुनिया में जो बेचैनी, अदालत की आवाजें इस बात की दलील हैं कि वह आदिल आने वाला है, वो अदालत फैलाएगा, और इसमें किसी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। वो जो हदीस कई तरुक से आई है, जो मशहूर है सरकार सल्लल्लाहु की, बैन फरीकैन यानी सुन्नी भाइयों की किताब में है, किताबों में हमारे पास भी है। सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया, आखिरी मेरा फरजान दुनिया में जाओगा आएगा, यमला किस्तला, जो दुनिया को अदल दास से भरेगा। जहां अदालत के खिलाफ जाए वो दुश्मनी अहले बैत है, दुश्मनी है इमाम महदी है। जहां भी जस्टिस और इक्विटी नहीं है, दुश्मनी है अहले बैत से, इमाम महदी से दुश्मनी है। और इमाम जब आएंगे अदल दादा, अगर आप देखें इसी 5-6 साल में जो यमन की तबाही है, जिसपे पैसा जितना खर्च किया गया, इराक की तबाही पर जितना पैसा खर्चा किया गया, अफगानिस्तान की तबाही पर जितना पैसा खर्चा किया गया, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अगर इस पैसे को कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, कंस्ट्रक्शन ऑफ यमन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इराक वगैरह, उसी तरह से फलस्तीन करते तो जन्नत हो जाते मुकाम। ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं? वो पांच चार पांच जो इंस्टीट्यूशन है, वही इंस्टीट्यूशन है जो डिवोर कर रहे हैं ये दुश्मन ने इमाम महदी चला। यही वजह है कि दुवस बिन, जिसको बिन सलमान कहते हैं, बिन सलमान भी नहीं कहता, बिन कहता हूँ, बिन आटे डस्ट बिन कसरा बिन ने, हाँ मैं इमाम महदी को जो है आने नहीं देंगे अपन अपने, अरे बे दीवाने बेवकूफ, ये तकदीर तकदीरात इलाहिया हैं, ये हिसाब शुदा हैं, ये होने वाला है, इसको कहाँ से रोक सकेगा तू? तुम्हारे जैसे हसन नसरुल्ला ने बहुत अच्छा, तुम्हारे पूरे अजदाद व आने वाली नस्लें कोशिश करो कुछ भी तुम्हारी कोशिशें बराबर नहीं होंगी, ये होने वाला है, इमाम मेहदी आएंगे, वो आएंगे भी तो खाने काबा में, उसको खाने काबा से लगा करके आवाज देंगे मैं हूं, कायनात में आवाज गूंजेगी जा अल हक वसाहा कल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका। अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक, इसके बाद मैं आपकी ज़हमत खत्म करता हूँ, रिवायत में कि वैलु लित्तुगातिल अरब मिन शर्र कद इक्तरबा, अब देखिए 1400 साल पहले लफ्ज अरब कहना था, अल अरब मखसूस अरब है, ये तमाम अरब बरादरान के खिलाफ नहीं है, कुछ हैं जो आज दुश्मनान खुदा के खिलाफ, दुश्मनान खुदा के साथ मिल गए हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। मौला ने फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाय हो वो बागी अरबों पर तो अब्दुल्ला इब्ने अबी याफूर ने पूछा, आप पर मेरी जान कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, कितने लोग होंगे, कम माल कायम अलैहिस्सलाम मिन अल अरब, ये नहीं पूछा कि कितने होंगे जो इनके खिलाफ होंगे, ये लोग जो बदबख्त हैं, अरबों में कितने होंगे जो इमाम मेहदी का साथ देने वाले होंगे। काला शैउ यसीर, मौलाना ने फरमाया बहुत कम लोग। फकुल तो वल्लाह अन अन मन यसफ हाद अल अरब मिनहु लकथीर, फकाल ला बुद्द लिन नास अन यमहसु व यमीज व यगरबलु व यخرج من الغربال خلقا كثير। अजीब गरीब है, बहुत खूबसूरत है। मौलाना ने फरमा जिस तरह से हम लोग जब किसी चीज को साफ करते हैं, आटे को साफ करना है, छलनी में डालते हैं, ये गिरबाल है, इसमें जब डालते हैं जो चीज हमारी जरूरत की नहीं, वो रह जाती, जो जरूरत वाली वो पाक साफ हो जाती है। इन्हें इमाम जब तशरीफ लाएंगे, इनको यार जैसे छलनी में डालकर हिलाते हैं उसी तरह से हिलाएंगे और फिर हक का हक बातिल का बातिल जुदा हो जाएगा। और आज वाज़े तौर पर हम ये समझ रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम पर्सनली नहीं, आज जो आसार हैं बिल्कुल वाज़े तर हो गए हैं, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद चीजें जो अपनी जिंदगी में की हैं उसके बाद आज हम सोचे तो यूनिटी ऑफ मुस्लिम के लिए बेहतरीन मसला जो इमाम खुमैनी ने छेड़ा वो फलस्तीन का मसला है। फलस्तीन के मसले को अरबी कोर्ट यार्ड से निकाल करके इस्लामी बनाना इमाम खुमैनी का ये तो इम्तियाज है। ये गैरबान, ये चलनी इमाम, लोग पूछते हैं आप लोग अरिजा लिखते हैं इमाम को जल्लाफरो शरीफ, जवाब आता, जी आता है, औलाद नहीं होती औलाद मिलती है, जवाब नहीं होता जवाब मिलती है, जवाब आता है तभी तो हम लिखते हैं, हम लिखे क्या, हमें यकीन है। तो ये जो गैरबाल की बात जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इब्न अबी याफूर से की है, इमाम आएंगे और ये खंगालेंगे इनको बिल्कुल अच्छी तरह से हिलाएंगे, पता चल जाएगा कि ये कौन है, आज पता चल गया, उस वक्त समझे ही नहीं थे खाएं क्या चीज, लेकिन आज अरबों का ज़ायनिस रजीम के साथ गोद में बैठ जाना, क्या ये गैरबाल नहीं है? بہترین ہے، خوبصورت ہے، لیکن نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں. اور وہ یو این میں ٹھہرا بھی کر رہا کہ یہ تمام گڑبڑ میں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں عرب مل گئے. جھوٹ ہے، عرب پہلے سے، یہ عرب جو بکھے ہوئے عرب ہیں یہ پہلے سے تمہارے تھے، صرف آج پردہ ہٹا ہے، وہ غیربال ہوا امام کی طرف سے اجل اللہ. اب سارے مسلمانوں کے سامنے کھلے ہوئے میدان ہیں، آپ حق کو قبول کیجیے، باطل کا انکار کیجیے، آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں سامنے. فلائٹس کھل گئے، آپ میں امبیسیڈرز ایکسچینج ہو گیا. اب اس کے بعد باقی کیا ہے فلسطینیوں کے لیے؟ ایک ہی کام ہے نا، ابھی وہ ریزسٹنس ہے. ان اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقام، استقامت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. جہاں ڈسٹرکٹیو کام ہوا ہے ان کی طرف سے، وہاں پر یہ غربال بھی ہوا ہے. بالکل دشمن کون ہے، دوست کون ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے. اب ضرورت ہے آنکھ کھولنے کی، سمجھنے کی، دین کو اور دینداروں کو. یہ لٹیرے دیندار نہیں ہو سکتے، یہ عیاش دیندار نہیں ہو سکتے، یہ ڈیوور کرنے والے امت مسلمان کو، اس مسلمان کو. مال حجاز، مال حجاز صرف حجازیوں کے لیے نہیں ہے، امت مسلمان کا مال ہے، انسانوں کا مال ہے، اور یہ لوگ عیاشی لگاتے ہیں. ان کی پلینیں سونوں سے بھری ہوئی، ان کے واش روم میں سونا ہو، اور مسلمان انسان بھوکے مر رہا، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ دشمنان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی فہرست میں سر فہرست ہے. اور ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے، وہی شخص جا سکتا ہے جو اسٹڈی کرے دین اسلام کو جیسے کہ دین بتا رہا ہے، جیسے کہ دین گائیڈ کر رہا ہے. اور دشمنوں میں لاسٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ ظاہری جن کو علماء کہا جاتا ہے، جو لوگ بے عمل عالم ہیں، یعنی بدترین دشمن امام مہدی ہوا ہے عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جو ظاہراً عالم کی صورت میں ہے لیکن جو دین کی تعلیم ہے اس کو اپلائی خود ہی نہیں کرتا. علماء سو. اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کو علماء سو کہہ کر کے نکال دیں نا، ہر ایک جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، ویل اویئر آف دا فیکٹ. مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں 70 ایسے علماء سو نکلیں گے. یہ 70 جو عربی میں آیا ہے، 70 یہ بنچ کو کہتے ہیں، کثرت کو کہتے ہیں، ضرور نہیں کہ 70 کے معنی 70 ہی ہوں. کچھ ایسے ہوں گے، آپ دیکھیے ان کی فہرست دیکھیے، ان کے بیانات دیکھیے، ان کی سلیقے دیکھیے. حجاز میں علماء سگنیچر کر رہے ہیں اس ٹریٹیز کو، بین زائنزم اور اسلام، مسلمانوں کے ساتھ یہ حاکموں کے تمام عمل کو سائن کر رہے ہیں، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے حفاظ قرآن نے کہا کہ جی ہاں. اللہ سے دعا ہے کہ شب جمعہ ہمیں یہ توفیق دے کے ہم امام مہدی علیہ السلام کے دوستوں میں شمار ہوں، हमारे अमल, हमारे कौल और फेल, दामे दिरम, इसे खाने जितना हो सके इस मिशन को साथ दे सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब जुम्मा दुआ मैं करके मैं ख़त्म करूँगा। يا من لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل أنت القوي نجنا عن قهرك يوم الخلل خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة عباده من نسلهم قد جاءنا من فضله العابد والباكر والصادق والكاتم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري والحجة القائم عجل الله تعالى فرج الشريف فرودگارا بحق محمد وعلى محمد بحق امام مهدي عجل الله تعالى فرج الشريف مولا کا ظهور جلد سے جلد فرما ہمارے کردار سازی میں ہماری مدد فرما تاکہ ظهور کے ہم قابل ہو سکیں ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما فرودگارا بحق محمد وعلى محمد مالک جو کووڈ کے حوالے سے جو بیمار ہیں یا اس سے ہٹ کر جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما شب جمعہ ہے شب دعا ہے ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے ان کو جوار امہ میں جگہ عنایت فرما وردگارا ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں بانٹنے والے سے ہونی قوتوں کو بانٹ دے